कि बड़े बड़े ब्राह्मणों को तुम अपने हाथ से दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करोगी, बात झूठी निकल गई। ये देखो इमानी खलु पद्मानी पादयोर वह कुलस्त्रिय है, मेरे पैरों में पद्म का चिन्ह है। ये पद्म का चिन्ह जिस स्त्री के चरण में होता है वो स्त्री राजा की श्रेष्ठ राजा की रानी हुआ करती है। मेरे शरीर में ऐसा कोई चिन्ह नहीं है जिससे मुझे विधवा होना पड़े, लेकिन मेरे शरीर में विधवा का लक्षण न होते भी आज मैं विधवा हो गई हूं। ठीक बात है, सत्य नामानि पद्मानि स्त्रीणा मुक्तानि लक्षणैः तान्य अद्य निहते रामे विदथानि भवन्ति मे। मेरे शरीर के बहुत शुभ शुभ लक्षण जो सद्भाव में रहते हैं आज सब मेरे निरर्थक हो गए। मेरे बाल कितने सूक्ष्म हैं, मेरे आंखों की भौवें हैं ये विधवा की नहीं होती सद्भाव की रहती वैसी मेरी भौवें हैं, और मेरी दंतावली, मेरे नेत्र, मेरे हाथ, मेरे चरण और मेरे गुल्फ, गुल्फ माने टकने, ये सब बिल्कुल बराबर हैं। देखो ये बराबर नहीं होते, टकनों में भी बराबरी नहीं होती, टकनों के जो गोले हैं वो कमती ज्यादा होते हैं। सीता कहती है कि मेरे बिल्कुल बराबर ये टकने के हड्डियां वैसी हैं, टकने ऐसे ही हैं, और मेरी पांचों उंगलियां, एक हाथ की पांचों उंगलियां और दूसरे हाथ की पांचों उंगलियां, इन इन उंगलियों में भी भेद होता है कि इनमें मेरा किसी उंगली में कोई भेद नहीं है। और मेरी नाभि बड़ी गंभीर है, मेरा वर्ण मणि के समान देदीप्यमान है। इन 10-12 लक्षणों के द्वारा मैं कैसे मानूं कि मैं विधवा हूं, लेकिन नेत्रों के सामने मरे हुए पति को देखकर मैं कैसे मानूं कि ये लक्षण मुझे सद्भाव के बताए जा रहे हैं। मुझे लाक्षणों एक नहीं सब लाक्षणिकों ने अर्थात सब ज्योतिषियों ने कहा था कि तुम अपने पति के साथ में ब्राह्मणों के द्वारा अभिषिक्त तो होगी, तुम्हारा पति राजा होगा उस समय तुम रानी बनकर बैठोगी। मुझे ये मालूम नहीं था कि मेरा इस प्रकार से जनस्थान से हरण हो जाएगा, नहीं तो मैं अपने अयोध्या को नहीं छोड़ती। मुझे मेरे पति ने कहा था कि तुम मेरे साथ मत चलो, जंगल में अनेक रूप बनाने वाले राक्षस प्रताड़ित करते रहते हैं, यदि मैं नहीं आती तो मेरा हरण नहीं होता, तो आज राम जी को लंका में आना नहीं होता और इस प्रकार से इनको मरना नहीं पड़ता। मैं अनाथ हो गई, राम और लक्ष्मण दोनों ही मर गए, परंतु इन दोनों के मरने के बाद अयोध्या जाकर कौन कहेगा। काल के लिए तो कोई भार की बात नहीं, काल तो मर्जी आए जिसको मार देता है, मर्जी आए जिसको जिलाता है, लेकिन ये नहीं देखता कि भाई अभी ये मरने लायक है भी या नहीं है। मैं किस किस के लिए शोक करूं, राम के लिए लक्ष्मण के लिए तो शोक बहुत की, ये दोनों तो मर गए, मैं भी अब मरने वाली हूं, मुझे अब सासू जी का बड़ा शोक होता है, मेरी सासू जी कितनी चिंतित होंगी। वो बिचारी रोज प्रतीक्षा कर रही है कि अब इतना समय निकल गया, इतना समय निकल गया। सासू जी क्या बताऊं, आपका सपना आपके अंदर ही रह गया, राम मर गए, लक्ष्मण मर गए और मैं भी अब मरने वाली हूं। इस प्रकार से सीता विलाप करने लगी। त्रिजटा ने धीरे से समझाया, सीते चिंता मत करो, विषाद मत करो, जिन कारणों से तुमको चिंता नहीं करनी चाहिए वो कारण तुमको मैं सुनाती हूं। क्या बात है त्रिजटा, जैसे कल मेरे सामने रावण ने माया से कटा हुआ सिर दिखाया था, क्या आज ये मायावय नहीं है, क्योंकि मैं साक्षात इनको देख रही हूं, ये तो माया का सिर नहीं, साक्षात राम और लक्ष्मण पड़े हैं, ये माया भी तो नहीं है। त्रिजटा ने कहा कि नहीं नहीं ये माया भी नहीं है, मैं तुमको एक बात बताती हूं, देखो ये पुष्पक विमान है, ये पुष्पक विमान विश्वकर्मा ने बड़े श्रेष्ठ पुरुषों के लिए बनाया है। पुष्पक विमान में वो स्त्री बैठा करती है जो स्त्री सद्भाव होती है,
जो स्त्री विधवा होती है वो उसको ये पुष्प विमान झेल ही नहीं सकता। यदि विधवा स्त्री इसमें बैठ जाएगी, पुष्प विमान अपनी जगह से उठेगा भी नहीं, आकाश में जाएगा भी नहीं। इसलिए पुष्प विमान में आप घूम रही हो ना, इसका मतलब आप विधवा नहीं हो। देखो सर्प के बाण लगने से राम जी मूर्छित हुए हुए हैं। मूर्छित होना अलग बात है, मरना अलग बात है। देखो बेटा, देखो त्रिजटा थी, सीता जी को बेटी के समान मानती थी। देखो तुम रोज रात में सोते हो, सोना भी तो एक मूर्छा है, कोई पता थोड़ी चलता है उसमें। ऐसे सोना और मृत्यु दोनों साथ साथ ही है, दोनों भाई बहन ही तो है। मैं तुमको बिल्कुल ठीक बात बता रही हूँ। आज से पहले मैं कभी तुम्हारे सामने झूठ नहीं बोली, आगे भी मेरा झूठ बोलने का स्वभाव नहीं है। सीता तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा शील, तुम्हारा स्वभाव इतना अच्छा लगता है, वो मेरे हृदय में बैठा हुआ है। तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो। इंद्र है, देवता है, असुर है, कोई भी तुम्हारे पति को जीत नहीं सकता है। मैंने जो बात कही है वो बिल्कुल सत्य सत्य कही है। देखो सीते, ये दोनों यदि मर गए होते तो इनके चेहरे के ऊपर कैसी चमक, वो चमक समाप्त हो गई होती, क्योंकि मरने वाले के चेहरे पर कोई शोभा नहीं होती। प्रायः मरने वाले लोग डरावने मुख वाले होते हैं, इसीलिए तो प्राणी मरे हुए व्यक्ति का जो स्वरूप देखते हैं उनको बड़ा भय भी लगता है। परम भवति वैकृतम, उनका शरीर विकृत हो जाता है, चेहरा विकृत हो जाता है। मैं तो भाई राम और लक्ष्मण को जब देखी तुम्हारे साथ, मेरे मन में बड़ा आनंद का अनुभव हुआ। यदि मेरे मन में आनंद का अनुभव हुआ है तो सीते देखो उनके अंदर आनंद था तब न मेरे पास आनंद आया, तो मेरे हृदय में आनंद कैसे आता। इसलिए सीते राम और लक्ष्मण के लिए तुम कोई चिंता मत करो, ये सब नाटकबाजी है। ये तुमको डराते हैं, तुमको धमकाते हैं, तुमको जो है तरह तरह से ये डरा करके कमजोर करना चाहते हैं। सीता ने कहा एवं अस्तु, क्या यही त्रिजटा यही बात है? बिल्कुल सत्य बात है। इस प्रकार से कह करके सीता जी का हाथ अपने हाथ में लिए हुए त्रिजटा ने पुष्प विमान से उनको उतार दिया, और उतरने के बाद वो उसी वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गई और बैठी हुई त्रिजटा से बोलती हैं कि त्रिजटा जी अब मुझे राम और लक्ष्मण के आगे के समाचार जब मैं मालूम करना चाहूं तो। त्रिजटा ने कहा तुम चिंता मत करो सीते, ये सारा काम मेरा है और मैं तुमको आगे के समाचार सुना दूंगी। अब आंखों से बंधे हुए थे, नागपास में बंधे हुए थे, बानर लोग बड़े शोक से आप्लावित थे। इसी बीच में धीरे 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 राम जी महाराज के थोड़े से एक नेत्र खुले, अपने आप ही नेत्र खुले, नेत्र टिमटिमाए, और बाणों के शरीर में पीड़ा भी हो रही थी, परंतु पास में ही पड़े हुए लक्ष्मण को उन्होंने देखा। लक्ष्मण को देखकर उन्होंने बड़ा विलाप किया और वो कहने लगे कि सीता के लिए मैंने आज अपने भाई को गुमा दिया। सीता मुझे मिल भी जाए या मेरा जीवन भी मुझे मिल जाए तभी लक्ष्मण के बिना मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं है। लक्ष्मण जैसा भाई संसार में मिलना बड़ा मुश्किल है। मेरा कितना हित देखने वाला ये भाई था। मैं अब सब बंदरों के सामने अपना शरीर छोड़ना चाहता हूं, यदि लक्ष्मण यहां नहीं है तो मैं भी अपना शरीर छोड़ता हूं। यहां से जाने के बाद मुझे कौशल्या पूछेगी, कैकेयी पूछेगी और मां सुमित्रा पूछेगी कि भाई तुम विदा हुए थे तब तीन थे और अब तीन में से तुम दो ही कैसे आए हो। मैं उनको क्या जवाब दूंगा, किस प्रकार से मैं उनको आश्वासन दूंगा। भरत मुझसे पूछेगा कि राम अपने कितने भाई थे, अब कितने हैं। भरत के प्रश्न का क्या जवाब दूंगा, और शत्रुघ्न को मैं रोते हुए शत्रुघ्न को किस प्रकार से सांत्वना दूंगा। मेरे साथ तुम वन में आए, कोई तुम्हारा आने का कारण नहीं था। सीता मेरी अर्धांगिनी है, मुझे वनवास मिलता है तो सीता, क्योंकि वो पत्नी होने के, लेकिन लक्ष्मण तुम्हारे लिए किसी ने भी नहीं कहा था। ओहो, मैं न सीता को प्राप्त कर सका न मैं तुम्हें सुरक्षित कर सका। जो प्राप्त मुझे था उसको सुरक्षित नहीं कर सका, सीता को प्राप्त लेकर करूंगा भी क्या। लक्ष्मण, जब मैं दुखी होता था तुम मुझे आश्वासन देते थे, अब तुम मुझे आश्वासन क्यों नहीं देते हो? पृथ्वी के ऊपर तुम पड़े हुए हो। लक्ष्मण, तुम तो मुझे छोड़कर कहीं जाते ही नहीं थे ना, मैं यहां बैठा हूं और तुम स्वर्ग में चले गए। वहां पर तुम हमारे पूर्वजों से मिलकर के क्या ये कहोगे कि राम के लिए मैं यहां स्वर्ग में आया हूं? लक्ष्मण, तुमने कभी मुझे अप्रिय शब्द नहीं कहे और तुम्हारे बाण बड़े तीखे बाण, फिर भी तुम घायल हो गए और फिर भी तुम्हारा शरीर नहीं रहा, क्या बात है? तुम्हारा बल कहां चला गया? मिथ्या, मैंने प्रतिज्ञा मिथ्या की, विभीषण को मैंने राजा बनाया था, ओहो, अब वो काम मैं कर नहीं सका। सुग्रीव, देखो अब मैं लक्ष्मण के साथ जाना चाहता हूं और तुम लोग अंगदम परिष्कृत्य, अंगद को आगे करके और रावण का सबका वध वगैरह करके तुम यहां से सीता को अयोध्या पहुंचा देना। अंगद है, नील है, नल है, वृक्षराज बानर है, इन सब के किए हुए उपकार को मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। आप लोग देवताओं के द्वारा भी युद्ध में पराजित नहीं किए जा सकते हो। सुग्रीव, तुमने हमारा बड़ा मित्र कार्य किया है। अब आप लोग वापिस किष्किंधा जाना चाहो तो जा सकते हो। यदि लक्ष्मण नहीं है तो फिर राम भी यहां नहीं है। वनवास के समय में लक्ष्मण मेरे पीछे आया था तो अब स्वर्गवास के लिए मैं लक्ष्मण के पीछे जाऊंगा। इस प्रकार से राम जी महाराज कहते कहते रोने लगे। इतने में ही सब सेना को यथावस्थित करके विभीषण जी महाराज हाथ में गदा लिए हुए दौड़े दौड़े राम जी की ओर आ रहे हैं और बानर राज सुग्रीव ने पूछा, विभीषण जी ये सेना व्यथित क्यों हो रही है? अंगद ने कहा, ये तो विभीषण जी गदा लेकर आए तो रात्रि में इनको राक्षस समझ करके बानर इधर उधर हो गए, आप लोग कोई चिंता न करें। सुग्रीव ने सब बानरों को वहां पर सावधान करते हुए कहा, आप लोग चिंता न करें, ये तो केवल विभीषण जी थे। विभीषण जी, सुग्रीव, वृक्षराज सब वहां पर उपस्थित हैं। सुग्रीव ने कहा, विभीषण देखो, तुम्हारे कारण से ये सब बानर कैसे डर गए हैं? ऋक्षराज ने कहा कि एक बार विभीषण जी सबको सांत्वना देंगे तब ये सब शांत हो जाएंगे। विभीषण जी ने सबको सांत्वना दी और उसके बाद राम जी के पास में लक्ष्मण जी, सुग्रीव आदि सब हैं ही। विभीषण बड़ा विलाप करने लगे कि देखो इस राक्षस ने क्या नीति खेली है, राम और लक्ष्मण को किस प्रकार से संज्ञा शून्य कर दिया है। ये दोनों बाणों से बिंधे गए हैं, पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि शायद मर गए हों। ओहो, हे राम, आपकी प्रतिज्ञा तो कभी झूठी नहीं होती है। आपने जो प्रतिज्ञा की उस प्रतिज्ञा को आप किस प्रकार से सत्य करोगे?
सुग्रीव ने कहा कि हे विभीषण, राम की प्रतिज्ञा को सत्य करने का काम मेरा है। मैं यहां रावण को मारकर, उसके पुत्र को मारकर आपको राजगद्दी पर बैठाऊंगा। एक काम करो। क्या? राम और लक्ष्मण को गरुड़ के ऊपर बैठा करके सीधा अभी किष्कंधा की तरफ भेज देते हैं। किष्कंधा जाने के बाद वहां इनको कोई भय नहीं होगा। जितने पीछे हम सब युद्ध करके रावण को जीत लेते हैं। सभी ने कहा यह बात बहुत श्रेष्ठ है। इतने में ही सुग्रीव के जो ससुर थे सुसेन जी, सुग्रीव ने सुसेन जी से कहा, हे ससुर जी, आप किष्कंधा के अंदर समाचार करा दो, जो हमारे वहां सेवक वर्ग उनको कहला दो कि राम और लक्ष्मण अभी वहां गरुड़ जी के ऊपर लाए जा रहे हैं, आप लोग जल्दी से जल्दी इनके आने की तैयारी में लग जाओ और इनके स्वागत में रहो। सीता को मैं ले आऊंगा, सबसे पहले मैं सीता को किष्कंधा लाऊंगा, तब तक इनको होश आ जाएगा और उसके बाद वहां से इनको अयोध्या में छोड़ के आएंगे, तब जाकर अपना कार्य पूरा होगा। सुसेन ने कहा कि सुग्रीव जी, मैं तो बहुत पुराना बानर हूं, देवासुर संग्राम हुआ था पहले किसी समय में, उस समय में जब समुद्र का मंथन हुआ था, उस समय की बात है। समुद्र के अंदर से कई प्रकार के जहर निकले थे, उन जहर के द्वारा वहां के प्राणियों को बड़ी तकलीफ हुई थी। तो वो क्षीर सागर के पास में बड़ी विचित्र औषधियां हैं, उन औषधियों को लाया जाए। ये संपाति और पनस आदि बानर हैं, बड़े वेग से वहां क्षीर सागर की तरफ चंद्र और द्रोण नाम के दो पर्वत हैं, वहां पर संजीव करणी और विश्ली करणी नाम की दो औषधियां हैं। उन औषधियों को यदि ले आते हैं तो इससे औषधियों का मंथन करने से बहुत जल्दी इनको होश आ जाएगा। इनके शरीर में जो जहर गया हुआ वो जहर बाहर आ जाएगा और जहर के बाहर आते ही इनकी मूर्छा दूर हो जाएगी और कोई उपाय मुझे दिखता नहीं है, क्योंकि समुद्र मंथन के समय में जो सर्पों का जहर फैला था उससे बहुत लोग घायल हो गए थे और उन औषधियों से फिर मैंने ही सबको दवाई दी थी और वो दवाई इनके लिए बड़ी लाभप्रद हुई। अरे अरे, ये हनुमान रहा, हनुमान को भेजो, हनुमान को भेजो। हनुमान जी महाराज यूं ही तैयार हुए, इतने में ही आकाश में से एक दिशा से ठंडी ठंडी वायु आई और जैसे कोई बदल आ रहा हो, ऐसे पर्वत के समान, बदल के समान विशाल आकृति वाले गरुड़ जी महाराज थे। वो गरुड़ जी महाराज उन बांदरों के पास में आ रहे थे। गरुड़ जी के आते ही सबके मन में बड़ी प्रसन्नता हो गई। गरुड़ जी आए और गरुड़ जी आकर के राम और लक्ष्मण के वहां बैठ करके उन्होंने सब सर्पों को, अरे उस समय सर्पों को चुगने की क्या, गरुड़ जी को देखती सर्प वहां से भागने लगे। वो देखो सर्प नाम क्यों है, यूं यूं सर्प, सर्प माने यूं सिरकते हुए चलता है। तो वो सर्प वहां से राम जी को और लक्ष्मण जी को छोड़ करके तत्काल जाने लगे और फिर राम जी के सारे शरीर पर गरुड़ जी ने यूं स्पर्श किया और लक्ष्मण जी के सारे शरीर का स्पर्श किया। इतने में ही राम और लक्ष्मण एकदम स्वस्थ होकर वहां पर दिखाई दिए। सारे बांदरों में बड़ी खुशी हो गई। राम जी महाराज ने गरुड़ से कहा, वाह गरुड़ जी, आज आपने हमारा बड़ा उपकार किया, आपने हमारे प्राण बचाए। आप बड़े आदमी ऐसे चिंतन करते हैं तो छोटे आदमियों का बड़ा भला होता है। ओहो, आपने तो हमारा और ही सुंदर रूप बना दिया। आपने कितने अच्छे मेरे स्वरूप को प्रकट किया है। गरुड़ जी ने कहा कि हे राम, मैं तो आपका बाहर का प्राण हूं, गरुड़ हूं, और सदा ही मैंने विष्णु का वाहन बनकर के उनकी सेवा का कार्य किया है। देवताओं का और असुरों का जब युद्ध होता था उस समय में आगे आगे देवता इंद्र को करके लड़ते थे और जिस समय में इनके ऊपर क्रूर बाणों की वर्षा होती, सर्प बाणों की वर्षा होती थी, तो मैं आकर के सबको हटाता था। लक्ष्मण के साथ आपको देख करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं। देखो मैं तो मेरी जगह पर ही था, ऋषियों ने मुनियों ने मुझे बार बार संकेत किया, गरुड़ लंका में जाओ, राम और लक्ष्मण भयंकर सर्पों से बंध गए हैं, तुम यदि शीघ्र वहां नहीं जाओगे तो राम और लक्ष्मण जो अब चेतना में गहन मूर्छा में है, फिर बाद में वो बड़े बारी खतरे में चले जाएंगे। और ये राक्षस तरह तरह की माया फैलाकर एक बहुत बड़ा संसार का लाभ होने वाला उसमें बाधा पहुंचाएंगे। उनकी बात सुनकर मैं त्वर मारे हैं बहुत जल्दी ही यहां आ गया हूं, अतएव आपका कार्य करना तो मेरे लिए ही लाभप्रद है। ऐसा कहकर के और गरुड़ जी महाराज का भगवान ने बड़ा प्रेम से आलिंगन किया और कहा, गरुड़ जी ने कहा, हे सखे अब मैं जाना चाहता हूं, मैंने अपना काम पूरा कर दिया, अब आप रावण को जल्दी से मार करके सीता को अयोध्या में ले जाओगे, इसमें मुझे कोई संदेह मालूम नहीं देता है। इतना कहकर के गरुड़ जी आकाश के अंदर उड़ गए और सारे बांदर वहां पर हर्षित होकर के तालियां बजाने लगे, भेरियां बजाने लगे, मृदंग बजाने लगे, अपनी पूंछों को लेकर के वो फटकारने लगे और उस समय अपने पास शंख थे, शंख बजाने लगे, बंदरों के हर्ष का कोई ठिकाना नहीं, बड़ा भारी नाद करने लगे। निशाचर लोग बंदरों के इस खुशी के नाद को सुनकर के बहुत आश्चर्य में डूब गए। रावण ने अपने पास के लोगों को बुलाकर पूछा, घबराया हुआ रावण, क्या बात है, बंदरों को ऐसी क्या खुशी मिल गई जिनकी भेरियां अभी तक बंद नहीं हो रही हैं, जिनका शंख बजता ही जा रहा है, अनेक मेघों के मिलने से जिस प्रकार का नाद होता है उस प्रकार की ये प्रसन्नता की आवाजें कैसे हो रही है। राम और लक्ष्मण तो इस समय मेरे पुत्र के द्वारा मारे गए हैं और ये बानर लोग हर्षित हो रहे हैं, क्या बात है, मेरे मन में बड़ी शंका हो रही है, आप लोगों को तत्काल जाकर के इस बात का पता लगाना चाहिए। राक्षस राज की बात सुनकर के कई लोग वहां गए और आकर के कहा कि महाराज का जय हो, क्या बात है, बानरों में इतनी प्रसन्नता क्यों है कि महाराज राम और लक्ष्मण होश में आ गए, नहीं हो सकता, या तो तुम्हारी बात झूठ है और या मेघनाथ की बात झूठ है, मेघनाथ की बात झूठ नहीं हो सकती क्योंकि उसने इंद्र को वश में किया है, राम और लक्ष्मण तो होते ही कौन है, मेघनाथ ने कहा कि वो मारे गए हैं और तुम कहते हो कि वे होश में आ गए, वो जिंदे हैं, तुम दोनों में से किसी एक की बात झूठी है। क्या नहीं महाराज, वो मरे नहीं थे, उनके अंदर थोड़े प्राण बचे हुए थे लेकिन उसके बाद उनको वापस होश आ गया है, होश आ गया इस कारण से वे वापस जीवित हो गए हैं। ये अप्रिय समाचार सुनकर के रावण कांपने लगा और उस समय में रावण कहने लगा, ओहो मेघनाथ ने युद्ध के अंदर जैसे जहरीले बाण राम और लक्ष्मण से बांधे थे, यदि आज वो सब निष्फल हो गए हैं तो मेघनाथ को जितने भी शस्त्र मिले उनका कोई अर्थ नहीं रहा। इस प्रकार से लंबी श्वास लेते हुए उसने अपने धूम्राक्ष से कहा कि हे धूम्राक्ष, अब तुम लोग जाओ और राम और लक्ष्मण के वध करके उनका समाचार लेकर के आओ। धूम्राक्ष, इंद्रजीत के द्वारा वो घायल किए गए थे लेकिन मैं ये यश मेघनाथ को न देकर तुमको देना चाहता हूं, जल्दी करो तुम। अब वो धूम्राक्ष अपने साथ में सेना लेकर के राम और लक्ष्मण के मस्त साथ युद्ध करने के लिए जाते हैं। अब वो रथ जिसमें अनेक घंटियां बजी हुई हैं, आगे पीछे निशाचरों की संख्याओं का कोई अनुमान नहीं है, हाथ में गदा और परिग लिए हुए ये लोग चले जा रहे हैं और इनके रथ हैं
इनके रथों के जो घोड़े उनकी विविध प्रकार की आकृतियां हैं, कोई घोड़ों पर बैठे हैं तो कोई हाथियों पर बैठे हैं, तो कोई वे पैदल ही चलते हैं और कई वे गधों पर बैठे हुए हैं और कई वे अपने हाथ में तरह तरह के शस्त्र लिए हुए हैं। पश्चिम द्वार की ओर आते हैं जहां हनुमान जी महाराज पहले से ही मौजूद हैं। जब वो मोर्चे के अंदर जाते हैं तो उनके लिए बड़े अपशकुन होते हैं। अंतरिक्ष के अंदर पक्षियों की आवाजें बड़ी भयंकर आ रही है। इतने में ये गीध आकर के उस रथ के झंडे के ऊपर गिरता है। उस समय में लोगों ने कहा कि महाराज आज शकुन अच्छा नहीं है। धूम्राक्ष ने कहा कि वीर पुरुष वीरता पर विश्वास करते हैं, उनके लिए शकुन कुछ भी नहीं कर सकते। अब बड़ा भयंकर राक्षसों का बांदरों का आपस में युद्ध होने लगा। वो बाणों की वर्षा करते हैं, वो अपने पास में वृक्ष लिए हुए घूमते हैं ताकि बाण वृक्षों में अटक जाते हैं और राक्षसों के द्वारा मथे हुए बांदर लोग वे थोड़ी देर में घायल होकर वापस तैयार होते हैं और शिलाएं लेकर के राक्षसों के ऊपर प्रहार करते हैं। राक्षस तीखे तीखे बाणों से उनकी शिलाओं को काटते हैं। इस प्रकार से वे सब युद्ध के अंदर मूर्छित वे लड़ रहे हैं। उनको आगे केवल युद्ध दिखता है, आगे कौन करेगा, कौन मरेगा, कौन जिएगा, इसके लिए उनको कोई विचार नहीं है। बानर लोग बड़े वेग से अपने हाथ में पत्थर लिए लिए राक्षस सेना के ऊपर डालते हैं। धूम्राक्ष उन सबको देखता है और अपने बाणों से पर्वत शिखरों को तोड़ता चला जाता है। कई राक्षस अपने हाथ में मुदगर लिए हुए हैं, कोई पट्टिश लिए हुए हैं और कोई अपने हाथ में भिंदी पाल लिए हुए, कोई भाला लिए हुए, तरह तरह के शस्त्र लिए हुए वहां पर चलते चले जा रहे हैं। धूम्राक्ष ने देखा कि ये बानर लोग किसी प्रकार से हमारे से कम नहीं पड़ते हैं। हाथ में धनुष लेकर उसने हंसते हुए जो है सब दिशाओं में बाण को चलाया है। उन बाणों से बहुत से बानर घायल हुए हैं। उस समय में क्रुद्ध होकर के बानर लोगों ने पर्वत शिखर लेकर धूम्राक्ष की ओर फेंका। धूम्राक्ष ने फिर उसको काट दिया है। फिर एक शिला ली और शिला लेकर के हनुमान जी महाराज ने उस शिला को लेकर राक्षस राज के रथ के ऊपर पटक दिया। अब उस शिला से उसके घोड़े सारथी सब मारे गए और हनुमान जी महाराज जो धूम्राक्ष अभी रथ से बाहर कूद करके लड़ रहा था, उन्होंने धूम्राक्ष से फिर दूसरा पर्वत शिखर लेकर के युद्ध किया और वो पर्वत शिखर धूम्राक्ष पर गिराया। तो धूम्राक्ष ने गदा ली, गदा लेकर के उसने हनुमान जी के ऊपर जो है प्रहार किया। वो गदा मामूली नहीं थी, उसमें तीखे तीखे शूल लगे हुए थे। हनुमान जी महाराज उस समय में उस गदा की चोट से घायल हुए, लेकिन तत्काल अपने को संभाल लिए और संभाल करके एक पर्वत शिखर लेकर के और धूम्राक्ष के सिर के ऊपर उसको पटक दिया। पटकते ही धूम्राक्ष वहीं पर पूरा हो गया। अब भाई ये काम करते ही रहना, हम तो बताते रहेंगे और आप करते ताली बजाते ही रहना। पवन पुत्र हनुमान इस प्रकार से उन लोगों को जब मार दिए तो सब बंदरों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। बंदरों ने जाकर हनुमान जी को ऊंचा उठा लिया। रावण के पास जाकर उनके दूत ने सूचना दी कि महाराज बड़े खेद की बात है, सेनापति धूम्राक्ष मारा गया। रावण बड़े क्रोध के अंदर चिल्लाने लगा, धूम्राक्ष मारा गया। धूम्राक्ष तो हमारे प्रधान सेनापतियों में था। फिर वज्रदंष्ट नाम का एक महाबली था, उसको कहा राक्षस तुम जाओ और देखो बांदरों सहित राम और लक्ष्मण को पूरा करके जल्दी आओ। ये लोग जाते हैं तरह तरह से मर के आते हैं, मेरी बदनामी करते हैं, तुम जाओ। राक्षस राज बड़ा मायावी था वज्रदंष्ट। वह अपने साथ में सेना लेकर के रवाना हुआ। वह भी एक बहुत सुंदर रथ में बैठा। उस रथ के अंदर सब प्रकार के शस्त्र रखे हुए थे, उसमें मूसल रखे हुए, उसमें शक्तियां रखी हुई और उसमें गदाएं रखे हुए और उसमें और भी शस्त्र थे।
कहीं पर कोई पैदल चलने वालों के शस्त्र यदि उनके कम पड़ जाए तो उनको शस्त्र दे सके, इतनी सामग्रियां उसके पास थी। कई गजारोही थे, कई अश्वारोही थे, कई रथारोही थे, ऐसे ऐसे उसके पास में लड़ने वाले योद्धा लोग थे। उसने सुना कि पश्चिम द्वार में तो हनुमान खड़ा है, हम पश्चिम द्वार में नहीं, हम दक्षिण द्वार की तरफ जाएंगे, क्योंकि राम वगैरह उधर ही मिलेंगे। अतएव वह अंगद जहां खड़े थे वहां पर चले गए। आकाश के अंदर बड़े उल्कापात होने लगे, गिदड़ियों की आवाज आने लगी और योद्धा लोग चलते चलते अनायास ही फिसल फिसल करके पड़ने लगे। वज्रदंष्ट ने थोड़ा धैर्य धारण किया और धैर्य धारण करके उसने जोर से नाद किया, दसों दिशाओं में उसका नाद गया। बंदर लोग उस समय तैयार हो गए, राक्षसों का और बंदरों का बड़ा भयंकर वहां पर युद्ध हुआ और उस युद्ध के अंदर शस्त्र फेंके जा रहे हैं, बाणों के द्वारा उनका नाश हो रहा है। बानर लोग उन पैदाती राक्षसों को मार मार करके उनके शस्त्र खोस खोस करके दूसरों के साथ युद्ध कर रहे हैं। किसी का कवच टूटता है, किसी का सिर फूटता है और किसी के कमर में चोट पहुंचती है, वो वहीं पर मर जाता है। जैसे कोई इस रणभूमि में कोई अपने हाथ में पास लेकर के यमराज जी आ गए हों, ऐसे राक्षस लोगों के ऊपर बंदर टूट गए हों। राक्षस लोग भी क्रोध से मूर्छित होकर दुगना उत्साह रखते हुए बांदरों के ऊपर